राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27/8/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथानिया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
क्या कहें, आश्चर्य आता है हमें। मनुष्य की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसने नीचे चले गए, अच्छे आदमियों का दृष्टांत दे देकर बुरा प्रचार करते हैं। तुलसी दर्दा, गणेश दर्दा, महान खोटा व्यसन उसने तुलसीदास जी महाराज का नाम, तुलसीदास जी का चित्र, बेचे दर्दा, तमकू बेचे दर्दा, बेचे व्यसन, बेचे व्यसन करे गणेश दर्दा। तुलसीदास जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, इनको मानते हैं, तो इनके नाम से बुरी बुरी चीजों को प्रचार करना महान हत्या कर रहे हैं। वे बड़ा भारी दोष कर रहे हैं। ये अच्छाई की चोरी में जो बुराई होती है वो बुराई पहचाने नहीं जाती। ध्यान दें आप लोग, रावण साधु के वेश में आया तो सीता जी पहचान नहीं सकी। अच्छाई के वेश में बुराई होती है, वो बुरी बड़ी भयंकर बुराई होती है। वो बुराई के वेश में बुराई आवे तब तो आदमी सावधान हो जाए, परंतु अच्छाई के आश में बुराई आती है तो आदमी सावधान कैसे हो। थोड़ा सा आप ध्यान दें, कृपा करें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्टवर दीन जानकी माता, हनुमान जी महाराज को अपना प्यारा पुत्र समझकर माँ आशीर्वाद देती है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियों के नवनिधियों के देने वाला बेटा तुम बन जाओ। अष्टवर दीन जानकी माता, जब दूसरे को सिद्धि और सिद्धि का वरदान दे सकती है तो उस माता में कैसी योग्यता होनी चाहिए। पर रावण को नहीं पहचान सकी तो सिद्धि क्या हुई। जब रावण को ही नहीं पहचान सकी तो सिद्धि क्या हुई। अरे वो क्या सिद्धि थी का वरदान देगी। अरे हनुमान महाराज सिद्धि और सिद्धि के देने वाले, और काल ने भी राक्षस को नहीं पहचान सके, संत समझ लिया और दीक्षाने में तैयार हो गए। ये क्या कौतुक है, बड़ा आश्चर्य आता है। तो माँ ने जब सिद्धि दे दी तो सिद्धि से पहचानने में कौन बड़ी बात थी। तो क्या बात है, वो मर्मुख की बात है, ध्यान देकर सुनना है। अच्छे पुरुष होते हैं वो दूसरे पर संदेह नहीं करते, और संदेह किए बिना उनकी तरफ परीक्षा की बुद्धि नहीं होती, बिल्कुल सरलचित होते हैं, साफ सीधा सरल स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, सरल संतोष सीधे। आजकल के लोग उनको मूर्ख कह सकते हैं, बड़ा मूर्ख है, कुछ समझा नहीं, दे समझ है, उनका नाम दे समझा में गिना जाएगा, परंतु शास्त्र में उनकी महिमा होगी। तो सीता माता है वो तो महाराज सरचित वालों की माँ है, सीधे सरचित हो उनकी तो जननी है, तो उनमें तो और ज्यादा सरलता होनी चाहिए, तो वे संदेह क्यों करने बैठी, और संदेह की अपने परीक्षा कैसे करे, संदेह हो तो परीक्षा करे ना। हनुमान जी महाराज जी सीधे साधु साधु पुरुष, वे क्यों संदेह करते, ये कौन है, साधु वेश में ठीक है, वे तर्क करते ही नहीं, उनके जिज्ञासा पैदा होती ही नहीं कि कैसा आदमी है। बुरा आदमी होगा तो अच्छे में भी बुरी कल्पना करेगा, और अच्छे आदमियों को बुरे में भी बुरी कल्पना नहीं करते। अंतर्गत सीधा होता है, सरल होता है, साफ होता है, तो क्यों ऐसी कल्पना करे, अगर वे विचार करे तो न जाने ऐसी बात हो सकती है, वे जान सकते हैं सभी, अच्छी तरह से पोल निकल जाए जान ले सभी, परंतु वे ऐसे ही कल्पना ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। कहा तो मारवाड़ी कि बाबा जी संसार कैसो कि बच्चा आप जैसो, संसार कैसा है आप जैसा है, आप सीधे हो तो संसार भी अच्छा दिखेगा, आप बुरे हो तो बुरा दिखेगा संसार। नारद जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि महाराज आप पांडवों के साथ पक्षपात रखते हो, दुर्योधनादि का पक्ष नहीं करके इनका पक्षपात, आपके पक्षपात भरा है। तो कहा अच्छा अपने यूं करो बचाओ। तो एक दिन कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन इस शहर में इंद्रप्रस्थ में कोई भला आदमी ले आओ, तो खाली आ गया कि भला आदमी कोई मिला ही नहीं। युधिष्ठिर को पूछा कि तुम जाओ भाई कोई बुरा आदमी ले आओ, कोई खाली आ गया, बुरा आदमी मिलेगी, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को भला आदमी नहीं मिला, चश्मा तो अपना चढ़ा हुआ रहता है ना, अपना जैसा चश्मा चढ़ा है वैसे देखता दुनिया को, तो भले आदमी को तो बुरा नहीं दिखता और बुरे को भला नहीं दिखता, इसका अर्थ नहीं है कि वो दिखता ही नहीं, ऐसा नहीं है, वे भले में बुराई का भाव नहीं करते, और दुष्ट होते हैं भले में भी बुराई का भाव करते हैं, समझे ना, ध्यान दिया कि नहीं आपने, बुरे होते हैं वो भला में भी बुराई देखेंगे, और बुरे ही होते हैं वो भला में बुराई, बुरे आदमी होते हैं वो भला में बुराई देखेंगे, और भले वो बुराई में बुराई देखते, अरे भलाई देखता है तभी तो वासुदेव सर्व स्थिति होगी, अरे बुराई बुराई देखे तो वासुदेव सर्व स्थिति हो जाएगी। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसे ही फल हो। तो आजकल अच्छे अच्छे नाम पर व्यसन कर दिया है, हनुमान जल जाए। कलकत्ते में बीती बात बताता हूं, सत्संग हुआ उस पर विज्ञापन छपाया अमुक समय स्वामी जी का व्याख्यान होगा हमारा, वे पन्ना लेकर पीछे अपनी बातें अपना ठिकाना अपनी वस्तुएं भर्ती छाप दी, उसी पन्ने के पीछे अपना विज्ञापन छाप दिया, ये चीजें हमारे यहाँ मिलती है। पूरी भली क्या किसी मेरे पूरी याद नहीं है, पंचावलिया क्योंकि स्वामी जी बीजा बन लेगा वो, ये तो हमारा विज्ञापन हो ही जाए। ये बीती हुई बात है, मैंने बुलाया धमका भी क्या करते हो तुम, अब विचार करो दूसरे का पत्ता दूसरे का पाना कागज भी दूसरे का विज्ञान भी दूसरा, उसमें पूरा विज्ञापन आप व्यापार का साथ दिया। बोलो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई सज्जनों, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसका बड़ा भारी पतन होगा। बोले उसे क्या हक था उस वक्त छापने का, परंतु हमारे हमारी वस्तुओं बिक जाए पैसा पैदा हो जाए, ये पैसे से बुद्धि जितनी भ्रष्ट होती है इतनी दूसरे से नहीं होती है। पैसा आदर पैसों का आदर होता है उसकी बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो जाती है, बड़ी नीची बुद्धि हो जाती है। आप लोगों को तो समझ में नहीं आवेगी पर बात मैं सच्ची कहता हूँ, झूठी नहीं है, फिर पूछ लेना मेरे से। संसार में अगर कुछ चीज निंदनीय और खराब है तो पैसा है, सबसे नीची बात पैसा है। पैसे शू रेत अच्छी है, कंकर अच्छे है, भिष्टा अच्छी है, पेशाब अच्छा है पैसे से। अब आपको तो बुरा लगेगा क्या बोलता है जी, इस बार तुम्हारे बक्सा बनाया जिसमें ऐसी निंदा करे तुम पैसों की, निंदा नहीं करता हूँ। वो पैसा खराब कब है कि जो मेरे पास पैसा हो जाए लोभ लग जाए पैसे को ऊंचा समझे तब खराब है, और पैसा का सदुपयोग करे अच्छे काम करे तो कोई है ही नहीं दुरुपयोग। वास्तव में वस्तु भली और बुरी नहीं होती, उसका सदुपयोग भला होता है और दुरुपयोग बुरा होता है, यह है सिद्धांत। पैसे से लोभ जागृत होता है और पैसों को सबसे ऊंचा मान लिया तो वो आदमी बहुत नीचा हो जाएगा, हो ही जाएगा, कभी ऊंचा चढ़ नहीं सकता। पैसों को तो लोभ लगेगा, पैसों को श्रेष्ठ माना और पैसों से ही तोड़ता है। हमारे कथा में तोड़ होगी, कथा में कथा बढ़िया हो गई तो रुपया भेंट ज्यादा है, कथा बढ़िया हुई। भेड़ थोड़ी आई तो रुपया साधारण कथा हुई, वहां अच्छी नहीं हुई। ये हमारे कथा करोगे पहचान है, कसौटी है। बताओ कितना गिर गए, पैसे से ही पहचान है। एक जगह सप्ताह हो रही थी, ये महाराज जी बांस रहे थे भागवत की सप्ताह, तो वहां मेरे जाने का काम पड़ा तो अंतिम दिन था। बार बार स्कंद चला तो उसी आरंभ में ही कहा कि कलयुग में पैसा ही प्रधान होगा। बार बार देखो आप लोग बारहवें स्कंद में दूसरा तीसरा अध्याय है,
दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय
दूसरा अध्याय आप ही कथा कर रहे थे। मैंने सुना कि बस कलयुग में पैसे की प्रधान, पैसा वो बढ़िया वो यूज, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, जैसे ये है टका नास्ती हा टका टका है इन सब टको नाम ले रहे थे तो शत्रुशो मित्र होते, अरे टके बिना मित्र हो तो शत्रुशो कहा हुआ है, पैसा पास में नहीं है। बताओ अरे उससे तोड़ते हैं, अगर ज्यादा पैसा होता हम बड़े आदमी हो गए। ध्यान दे के सुनना, कृपा करके मानना न मानना आपकी मर्जी है, मेरी बात ध्यान दे के सुनना। आप लाख रुपया होने से लखपति होते हो, करोड़पति होने से बड़े ऊंचे करोड़पति अपने को बड़े समझते हो, ये आपकी इज्जत हुई फंसी थी नहीं अच्छी समझे, इज्जत हुई। हम करोड़पति हैं, हम लखपति हैं, लाख रुपये हम बड़े आदमी हुए। तो तुम रुपयों से बड़े हुए तो बुढ़िया तुम हुए, रुपया बड़ा हुआ। अगर रुपया लाख न हो तो आप बड़े आदमी नहीं रहोगे, आपके करोड़ कुछ पैसा और करोड़ रुपया नहीं होगा तो आप बड़े नहीं रहोगे, नीचे हो जाओगे। तो आप करोड़पति होते हो नीचे हो, महान नीच हो नीच, क्योंकि रुपये ज्ञान से बड़े हुए। तो आपकी तो फजीती हुई है, फजीती, आपकी इज्जत बड़ी नहीं है। ऐसे कोई विद्या के कारण ऊंचा मानता है अपने को, मैं पढ़ती हूँ पढ़ा हूँ, तो तुम्हारी फजीती वही फजीती, सीखी हुई विद्या की तो होगी इज्जत, और तुम्हारी वही फजीती जो साक्षात परमात्मा का अंश हो, ये इज्जत हुई है कि फजीती हुई, पर इज्जत मानते हैं इसमें। बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है, कहाँ इज्जत, बड़ेपन कहाँ है, और बड़ेपन कहाँ माना है आपने, होश है कि नहीं, ये विचार करो जरा। अरे भाई, अच्छे गुण होते हैं तो अच्छे गुण में अभिमान नहीं होता है। आम फले नीचो लगे आकाश हो जाए, समझाए नहीं, आम के फल लगते हैं तो झुक जाता नीचे ही हो, अगर इंडिया के बीज आवे तो ऊंचा निकलता ही हो। आम फले नीचो लगे गर्भ नया वासुकी विष्णु गोविंद माते ने उर्दाती कंठ का वासुकी के पास में जहर फूंकते तो भस्म करते दुनिया को, ऐसा उसके पास जहर है पर घमंड नहीं करता। अरे बिच्छू के पास थोड़ा सा डंक के पास में जहर है, यूं यूं घूमता जहर ऐसा मेरे पास में जहर। ये जितना अभिमान होता है तुच्छता से होता है। अच्छा पना आ जाएगा, श्रेष्ठ आएगा, अभिमान गल जाएगा। अभिमान तुच्छ चीजों से होता है। अब वे तुच्छ चीजों को भी फिर भी भगवान को, संतों को, भक्तों को ला ला करके अपना व्यापार बढ़ा दे, धक्का रहे उनको, ऐसे कोई मिल गया भगवान की उपासना करे संतों को, जो हेतु रहित दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, संतों को भगवान को दो को बड़े श्रेष्ठ माना है, उनको लाकर जर्दा बेचते हो, तम्बाकू बेचते हो, पान राग बेचते हो, क्या क्या करते हो, कोई ऐसा करता हो हाथ जोड़ के मना करो, अरे भाई इतने क्यों फसल में जा रहा है तू। कलकत्ते में मैंने देखा, कलकत्ते मेरे 500-600 महीने काम पड़ा है, बहुत वर्षों पहले, आज से कोई 50 वर्ष पहले, तो देखता हूँ तो वो मलम और लगाने का है जिसमें एक स्त्री की मूर्ति बढ़ा करके आधा लिखी थी, काश लगा दिया और साइकिल पीछे उसमें चलाते हैं और वो स्त्री लगा रही है। मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और संपूर्ण लोग जिनकी बुद्धि भ्रष्ट समझते हो कि ऐसे तो मेरे विज्ञापन देखेंगे नहीं, लुगाई की तरफ देखेंगे जखवार करके, तो लुगाई के रखो अपने चित्र साहब ने, कितनी तुम्हारी फजीती हो रही है, तुम्हारे मन कैसा हो रहा है जिसमें विज्ञापन देने वाले स्त्री का चित्र रखते साहब ने, क्योंकि ये तो तुम देखो नहीं, चित्र लिखो तो लिखा देख नहीं देखो, लुगाई की तरफ जखमार देख नहीं पड़े तो करो, ये तुम्हारी फजीती हो रही है, इतनी क्यों हो रही है, आप लोग बेसनों में फंस गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इस बेसनों से ऊंचे उड़ो तो आपकी बुद्धि तेज हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। मेरे को आश्चर्य आया कि देखो क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है इनकी, और क्या लोगों की बुद्धि है जिससे मैं सब लोगों की बुद्धि को पहचानते हैं, कैसे करो अपने ऐसे विज्ञापन करो जिसे वे देखेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भारतवर्ष था ऊंचा आदर्श धर्म का और ज्ञान का भगवान के भक्ति का, उसमें क्या दशा हुई है आज, एक पैसे लोभ के कारण से पैसा मिल जाए पैसा मिल जाए। अरे भाई, अच्छे पुरुषों ने पैसा का आदर नहीं किया है, सदगुण सदाचारों का आदर किया है, भगवान की भक्ति का आदर किया है, तत्व ज्ञान का आदर किया है, पैसे तुच्छ है। अब कहो तुमने कैसे कह दिया, ऐसा पेशाब से और टट्टी से रेत से कंकर से भी नीचा है पैसा। अब सुन लो ध्यान दे करके, टट्टी काम में आती है, कुत्ता खाता है, सूर खाता है, पैसे को कौन खाता है, किसी काम आता है, बताओ। पेशाब से रोग दूर होते हैं। मैंने देखा बचपन में बकरियों के रोग हो जाता है, पेशाब कर टोक दिया मैंने उन पेशाब से रोग ठीक हो जाता है। अरे आजकल तो मूत्र चिकित्सा निकली पुस्तक, मूत्र चिकित्सा, मूत्र पीने से रोग दूर होते हैं। रुपया खाने से कितना रोग दूर है? रुपया खुद काम आता है क्या? खुद काम आता ही नहीं। रुपया रुपया से चीज ले लेते हैं। अब चीज ले लेते हैं से रुपया बड़ा हो गया, रुपया बड़ा हो गया तो रुपया खर्च करके चीज क्यों लेते हो? रुपया है ही आपके पास में, ना अन्न लेना चाहिए, ना जल लेना चाहिए, ना कपड़ा लेना चाहिए, ना मकान लेना चाहिए, क्योंकि बड़े तो रुपये हैं। रुपयों को संचय रखो, खाओगे पहनोगे उसके भीतर रहोगे क्या करोगे? बुद्धि भ्रष्ट होते होते हद हो गई। ये तो भीष का माध्यम है, रुपये हैं वो तो आदान प्रदान करने के लिए एक साधन है, ये साध्य थोड़ी है चीज। साध्य तो परमात्मा तत्व है, ये तो साधन है। इस बार साधन की दृष्टि से बहुत काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है आदान प्रदान करने के लिए, परंतु इसको बढ़िया समझ लो। खर्च तो करते नहीं, क्योंकि बढ़िया चीज है, खर्च कैसे करें? भूखा मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, बोझा सिर पर लेके चले जाएंगे, परंतु पैसा खर्च नहीं करेंगे। एक संत थे, मेरे को बात बताई कि मेरे पास पुस्तकें हो गई, मेरे पास कपड़ा हो गया, पैसा भी था, मैं उठाए फिरता था, क्योंकि अगर किसी को दें तो मजदूरी लग जाएगी, पैसा खर्च हो जाएगा। अब दुख पा लेते हैं पैसा खर्च, तो पैसा आपके लिए है कि आप पैसों के लिए हो? आपको पैसों ने पैदा किया है कि आपने पैसे पैदा किए हैं? अरे कहने में कहना रुपये तो कहीं हाथरो महल है, और हाथरो महल है काल यदि कोर है क्या है? सब सो विचार करो क्या है पैसा। पैसे की जगह पैसा बहुत ही काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है, परंतु आपकी इज्जत पैसों के कारण से नहीं है, आपकी इज्जत त्याग से है, ऊंचा उठने से है, पैसों के खर्च करने से है, पैसों के जमा करने से इज्जत नहीं है। कई आदमी आपको कह देंगे तो वैसी बार में चोरों में चोर का सरदार वो साहूकार होता है, चोरों का सरदार होता है, मुख्य होता है वो कोई साहूकार होता है क्या? महान चोर होता है। ऐसे रुपया मारे में आप बड़े हो गए तो आप बड़े हो गए, चोरों का सरदार बड़ा होता है, चोरों का सरदार है तो चोरों का। ऐसे रुपया वालों में आपकी महिमा है तो कोई आपकी महिमा थोड़ी है, ये आपकी निंदा है। आप परमात्मा के अंश हो साक्षात, स्वयं विचार नहीं करते हो आप कौन हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, नवी वंश हो जीव लोगे जीव भूत सनातना भगवान कहते हैं। अरे भक्त कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, ऐसे आप परमात्मा के अंश हो। अपने वंश को सोचो, आप किस वंश के हो, कहाँ हो आप, किसकी संतान हो। ऐसे भ्रष्ट होने के लिए आप नहीं हो, भाई हो चाहे बहन हो, आप परमात्मा के अंश हो। परमात्मा को संभालो, परमात्मा की तरफ करो तो आप ऊंचे हो ही जाओगे। मीराबाई कितनी ऊंची हो गई, क्या उन्होंने पैसों का आदर किया है, क्या राज्य का आदर किया है, क्या मैं बड़े घर की कन्या हूँ इसका आदर किया है, अथवा मैं बड़ी रानी हूँ बड़ी ऊंची दर्जी इसका आदर किया है क्या? आज दुनिया उनको याद करती है, हम लोग साधु ये भी उन पद गाते हैं, मीराबाई का पद बड़ा सुहाना लगता है, हृदय में शांति पहुंचती है, भगवान के चरणों में प्रीति पैदा होती है। तो बड़ी मीराबाई हो या भगवत भजन करने से, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों ने कोई न शास्त्री की परवाह न पीर की, उल्टी मर रहना बाबा ये बहनों माताओं से डर लगता है कहीं ऐसी हो जाए, मैं तो भजन करूंगा, मैं तो होगी मीराबाई भजन कर जाएगा बहाना, और घरवालों काम नहीं करेगा धंधा नहीं करेगी, ऐसी मत हो जाना बहना। मैं इस भाव से नहीं कहता हूँ, घर का धंधा करो भजन करो। द्रौपदी थी, द्रौपदी भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए गए, ये वनपर्व में कथा आती है 235-37 की तैयार ठीक संख्या याद नहीं है। तो वहाँ कथा आती है, भगवान तो बैठ गए पांडवों के पास और सत्यभामा जी जाकर द्रौपदी के पास बैठ गई। तो द्रौपदी से पूछती है सत्यभामा कि तुम पांचों को कैसे राजी कर लेती हो, कोई मंत्र दंत्र आता है कि तेरे कोई दवाई दी खिलाई है, क्या करती है, मेरे को बताओ। द्रौपदी कहती है आप मेरी परीक्षा लेती हो क्या, जो जंत्र मंत्र करती है पति को वश में करती है अपने वश में चलती है, वो तो दुष्ट स्त्रियां होती है, मेरे को आप कैसे पूछती हो, ये मेरे प्रश्न करती हो। कहने मैं देखती हूँ तुम्हारा भसा वसा है, इस बात तुम राजी रहते, पांचों पांडव राजी रहते हैं, तुम बताओ क्या बात है, वो मेरे को बताओ मैं भी करूं। तो मैं जंत्र मंत्र करती हूँ, कोई दवाई खिलाती हूँ कृष्ण भगवान को पांडवों को, अब क्या कैसी हो। तब वो उन्हें अपनी बात बताने शुरू की, आपके पढ़े जैसे अध्याय है, जो आई दो अध्याय है वहाँ 200 से ऊपर 34-35 की सही है ठीक याद नहीं है संख्या, वहां पर वन पर्व में कथा आती है। उसने कहा द्रौपदी ने, द्रौपदी कहती है हमारे भंडार में कितनी चीजें हैं उसका मेरे वो सब ज्ञान होता है, गेहूं कितने, चावल कितने, दाल कितनी है, पापड़ कितने, बड़ी कितनी है, कितनी कितनी चीजें हैं इनका मेरे को पता था। और ये पता नहीं महाराज, आश्चर्य जैसी राज रानी होती हुई कह रही कि महाराज की सवारी निकले उसमें हाथियों के कितने गहने हैं और घोड़ों के गहने कितने हैं, पैदलों के गहने कितने हैं, सवारी में निकलने वाले गहने को मेरे को हिसाब है सब याद है। अरे इतने नहीं, राज की गायें जहाँ रहती है, राज की भैंसें रहती है, राज के भेड़ बकरी रहती है, राज के जहाँ ऊंट रहते हैं उनके कितने कितने नौकर है, कितने के पास में कितनी कितनी उनको तनख्वाह दी जाती है और क्या क्या उनके पास चीजें हैं, कौन कौन चीज का अभाव है, उसका मेरे को ज्ञान रहता है और मैं प्रबंध करती हूँ सबका। पांडवों को कहना नहीं पड़ता, सब काम मैं रखती हूँ हाथ में और सब विचार मैं करती हूँ कि कैसे कार्य सेवा हो जाए। हजारों दासियां हैं उनके कितने गहने हैं, कितने कपड़े हैं, जिसके पास कौन सी चीज की कमी है, ख्याल रखती हूँ और सबको मैं देती हूँ, सब बर्ताव करती हूँ। अगर वे आते हैं तो खरीद सामने उसको कभी नहीं कहते ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ऐसे उनको नहीं कहती, मंगा मैं ठीक ठीक कर देती हूँ। आजकल की स्त्रियां है क्या करें, आप समझ कर मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं सबको जानता भी नहीं, आप क्या करती हो। पति आवे तो कि आज साग नहीं बनाया, साग रे कोई है साग लाते, रंध गई मत हो गई से लाल दियो को नहीं मत हो रंध, आप बात है स्त्री की निकाले, जो कुछ बातें हो जो पति जीवन लेके बैठे जो मैंने सुना है खोटी गई सुना, थारी माँ यू कहे मारी, थारी बहन यूं कहे मारे यूं कहे, अरे सोरी रोटी तो खाने दे चले गो मैं तो सोला दे रही हूँ, ये कोई स्त्री का धर्म है, तुम बर्ताव करो। अच्छा मैं पांडवों कोई बात नहीं कहती हूँ, आते ही मैं खड़ी हो जाती हूँ, हाथ जोड़ खड़ी हो जाती हूँ और कोई काम के लिए उन्होंने कहते नहीं हूं, सब तरह से आप अगर करो तो ये करो। जो दिन ऐसी सुंदर बातें बताई है महाभारत के वन पर्व के बाद कथा है वहां की, तो ये स्त्री में कितने गुण, कितनी बड़ी रानी होती हुई कितना ख्याल रखती है, जंगल में रहने वाले जो गाय भैंस भेड़ बकरी रखने वाले ऊंट और रखने वाले रहते हैं राजकीय, उनके भी नौकर कितने हैं, कितनी की कहाँ किसकी कमी है, उसे मैं ख्याल रखती हूँ, सबका प्रबंध करती हूँ। सब 80,000 ब्राह्मण रोजाना भोजन करते थे, 80,000 उनके भोजन का प्रबंध मैं करती हूँ, ख्याल करती हूँ कि कितने कितनी चीजें कहाँ कहाँ हाजिर करनी है। एक दो दिन में आदमी तंग आ जाए उम्र भर में 80,000 भोजन करे ब्राह्मण, उस ब्राह्मणों की सब तैयारी करती हूँ। मेरे पास पांडव कहने कोई जरूरत नहीं, नौकर नौकरी वाले बहुत है, उनसे कहकर सब काम करवा लेती हूँ, कितनी विचित्रता है। वन में जब गए हैं जंगल में, ने कहा है क्या आपकी दशा थी, वो साग भैरव राग होती थी, भैरव राग से आपकी नींद खुलती थी, आज श्यालिया बोले दिन से आपकी नींद खुलती है, क्या दशा हो गई है। ये भीमसेन बड़े बड़े सूरवीरों को कुश्ती करके शिक्षा देता था, आज बेचारा पड़ा है यू देश में हुआ हुआ, चंदन लाल चंदन लगता था, तेल का मालिश होता था, ऐसा करते दिन में क्या है। ये हमारे सास के प्यारे पुत्र नकुल और सहदेव छोटे बच्चे की तरह ऐसे मेरे सास के प्यारे पुत्र, उनकी दशा क्या हो रही है। कथा तो विश्व युवा गजऊ गजऊ विलोक ये उत्साह से न बाधित हूँ, आपके चित्र में कोई विचार नहीं आता है। छोटे बच्चे होते हुए कितने बेचारे पड़े हैं, यूं ही रेते में कहीं पड़े हैं, खाने पीने की ठंग नहीं है, कोई चीज का प्रबंध है नहीं, आपको विचार नहीं आता। क्या आपके मन में तेजी नहीं आती, आपको विचार नहीं आता क्या आपके मन में तेजी नहीं आती। बड़ी जोर से बोली द्रौपदी, भीमसेन बोला निर्भक्ति विशेष निष्पिहा गुरु देपस्थित, आप ऐसे मत समझना कि लुगाई स्त्री क्या कह रही है, और स्त्री क्या कह रही है, स्त्री नहीं कह रही है क्या, कौन कह रहा है ये बात नहीं है, वक्ता कौन है ये नहीं, बात कितनी बढ़िया कह रही है, आपको विचार करना चाहिए। और जो भी से यहाँ तक कह दिया है महाराज, एक दिन सुनाई भी थी मेरे पास, अच्छा क्षमा निरस्त विक्रमा तिराज पर यही सुख साधनम, आप सुख का साधन क्षमा 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 करते हैं, ऐसे क्षमा ही क्षमा आपकी हो तो बिहार लक्ष्मी पति लक्ष्मी कार ये आपका धनुष है जिस पर भगवान विष्णु का चिन्ह लगा हुआ है, उनकी मूर्ति है ऐसा धनुष, उसको तो छोड़ दो और जटा धान कर लंगूठी लेकर बाबा जी बन के बैठ जाओ जंगल में। ये क्षमा करना साधुओं का काम है, राजाओं का काम नहीं है, राजाओं का शासन करने का है, फिर राजा क्यों कहलाते हैं, धनुष्मान क्यों लिया है ये, ऐसे द्रौपदी बोली युधिष्ठिर महाराज को। स्त्रियों को अच्छी बात कहने का अधिकार है, पति को कहना ऐसा नहीं कि पति कह क्यों करो, पति की प्रसन्नता लेना काम है, ऐसे उन्हें अच्छी शिक्षा देना काम है। दशरथ की स्त्री गंधारी किसी पति प्रसा उदाहरण हरेक मिलता नहीं है इतना, ऐसी पति प्रसा जब सुना कि तुम्हारे अभी भावी पति होने वाला है, संबंध है उनके साथ ब्याह होगा, उनके नेत्र नहीं है, तो उसने आंख में प्यक्ति बांध ली कि जो सुख पति देव को नहीं है वो सुख मेरे को लेना ही नहीं है, होती हुई आंखों को पट्टी बांधी सुखदार बन गई, इतनी पति प्रसा। परंतु जिस समय द्रौपदी का तीर खेचा है उस समय दशरथ को क्या कहा है, कुल का नाश हो जाएगा, आप समझते नहीं हो सती के तेज पतिव्रता का तेज कितना है, एक जबान के लिए भस्म हो जाओगे, जल्दी जल्दी करो उसको नहीं तो आपका बड़ा बड़ा अमंगल हो जाएगा। दशरथ को कहा खूब जोर से, कितनी ऊंची रहती है पतिव्रता जो आंखों की पट्टी बांध रही, कितनी ऊंची है सूझ देखो, सूझ हमारे भारत की कन्याओं की सूझ कितनी होती है, कितनी विलक्षण सूझ है। और बड़े कहती है साहब भाई आपको दुर्योधन का मोह छोड़ देना चाहिए, ये बेटे का मोह के बीच में आकर फंस कर कुल का नाश कर देगा, ये इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। और माँ का हृदय कितना विचित्र होता है, दुर्योधन कहता है लड़ाई में जाता है कहते माँ तू आशीर्वाद दे दे, तेरी जय वो आशीर्वाद दे कि बेटा जय तो धर्म की होगी मैं कैसे दे दू, जिस समय में सब मर गए सौ के सौ बेटा मर गए और सौ बहुआ रो रही है, एक माँ के सामने एक भी बहू रोवे, मानो बेटा मर जाए और बहू रोवे तो हृदय में क्या दशा होती है सासू के, सौ बहुआ मर गई सौ बहुआ रो रही है सौ बेटा मर गए, ऐसे समय में बड़ी व्याकुल हो रही है वो और सब रो रही है, देख लो भाई युद्ध भूमि में गई है, आंखों की पट्टी बंधी हुई है, क्या कि बेटा तुम अपने अपने पति को देख लो पहचान लो और उसके साथ सती होना चाहो सती हो जाओ, ऐसे वो युद्ध भूमि में मुर्दे पड़े हैं उसमें घूम रही है। उस समय में उसके हृदय में बड़ी लाशी लग गई, सौ बेटा मर गया जिस माँ का, उस माँ की क्या दशा होती है आप जरा सोचो, न करे भगवान किसी का बेटा मरे मगर किसी का बेटा मर जाए तो माँ की दशा क्या होती है, ऐसे सौ बेटों की माँ अरे सौ के सौ मर गए। भगवान गांधारी के सामने गए और नमस्कार किया, बड़ी समझते थे ना गांधारी को, और कहा कि देखो गांधारी तुम याद करो दुर्योधन को आपने आशीर्वाद नहीं दिया था, वो दिन याद रखो, कहीं अभी जोश में आकर सांप मत दे देना। पांडवों का दोष नहीं है, दोष तेरे बेटे का है, इस बात को याद रख, तुमने क्यों नहीं दिया उस समय में, उस बात को याद रखो। ऐसा युधिष्ठिर महाराज भी गए, बड़ी माँ थी ये, उसे नमस्कार करने को गए तो गांधारी के यहाँ से थोड़ी यूं नजर जाती थी, युधिष्ठिर यूं किया तो हाथों पर यहाँ पड़ जाएगा, नख जल गए उसकी दृष्टि से, युधिष्ठिर के नमस्कार किया जिसमें इतनी तेजी आ रही थी बीच में, भगवान ने कहा गुरु को तो पास साफ मत देना, तो जोश में आई गई पांडवों को साफ दे देगी। और वो आए ऐसे अर्जुन तो चट भगवान के पीछे आ गया कि कहीं मर देख ली तो मुश्किल हो जाएगी, मर जाऊंगा कहीं भगवान के पीछे से कि पहले हो जो इनको होगा अपने बचो। फिर महाराज तो भी मैंने साफ दिया, कहते किसने तेरे कहीं किया, तेने युद्ध किया, तेरे वंश का नाश हो जाएगा। हाँ माँ जी बहुत ठीक है, मेरे को स्वीकार है, अच्छी बात है, समझे, तेरे वंश का नाश हो जाएगा, मेरे वंश का नाश किया, तेरे वंश का नाश हो जाएगा, ये सब दिया गंधारी ने। भगवान को कौन नहीं था, यद याद वो ये कुलम अस विषय यमास्ते, ये महाराज राधे बैठा है, भगवान ने कहा कि पृथ्वी का भार दूर होने पर भी दूर नहीं हुआ जो ये यादव कुल सब पास है, बाकी बचा है। तो वहां ऋषियों का भी साप हुआ, उसे जाकर सामने को पेड़ बताया महाराज इसके क्या जलमेगा, तो ऋषि कहते हमारे से मुश्किल मुंह से जलमेगा तुम्हारा नाश करने वाला, इसमें जलमेगा ये मुंह एरा हुआ उसे फिर मरे सबके सभी। ये बड़ा घरों के आदि बहुत दिन होते हैं तो उनकी दशा यही होती है, जैसे कृष्ण भगवान का वंश क्यों न रहे, भगवान खुद कहते हैं नाश हो जाए, अच्छी बात है। तो गांधारी को कितनी आश्वासन दी, सांत्वना दे दी और तुम पांडव को साफ मत देना। और द्रौपदी की महाराज भिलिक्ष बात है, द्रौपदी और द्रौपदी से बन करके उसी बहु उत्तरा, कितनी बात है, थोड़ी छोटी अवस्था थी, एक बच्चा पेट में, पहला बच्चा पेट में था उसके, छोटी अवस्था, ऐसी अवस्था में भी महाराज उसकी भक्ति देखो तो मेरे तो कभी की बात है कि द्रौपदी से थे, अपनी सासु द्रौपदी है उसने भी उसका उसका भाव बड़ा तेज है। प्रन्यस्त विप्रुष्ट विदम मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिंगत आत चक्र मातुस्त में शरणंगत आया। महाराज परीक्षित सुखदेव जी के सामने कहते हैं भगवान के चरित्र सुनाओ, तो उस समय कहते हैं माता द्रोणी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसने पांचों पांडवों के पांचों ही बेटों को सूतों को मार दिए, कत्ल कर दिए और उसने कह दिया कि पांडवों का वंश नहीं रहने दूंगा, वंश खत्म कर दूंगा मैं। ऐसे जोश से महाराज वो द्रौपदी वो उत्तरा के गर्भ में था परीक्षित, वो गर्भ में था बच्चे, उस समय वो गर्भ में थे, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया कि इसको नाश कर दूं, गर्भ को कांधे जैसे आगारी पंड हो गई, कैसे पैदा ही नहीं हो आगारी, वंश ही न रह गया। द्रोण से पृष्ठ में जब मजा वो द्रोणी के अस्त्र से मेरा अंग जल गया था, छोटा सा गर्भ में था, उससे की बात कही है, वहां गदा दिए मेरी रक्षा कर रहे, छोटे से भगवान उस गर्भ के बार बार रक्षा कर रहे। जुगोप कुक्षिंगत आत्मचक्र, आत्मचक्र कुक्षिंगत माम जुगोप मेरी रक्षा करी, वहां पर मातुस्त में यह शरणंगत आया, मेरी माँ शरण गई भगवान के, महाराज मैं शरण हूँ। वो कहते ये द्रोणास्त्र मेरे को बेशक भस्म कर दे परंतु मेरे संतान का नाश न कर दे, संतान बीजं कुरु वंश नाम सम्मान, संतान का बीज काश ये मर जाए तो फिर संतान नहीं रहे, अगारी कोई वंश ही नहीं रहे। ऐसे उसको जुगो भगवान ने रक्षा करी उसकी, तो उसकी जो भक्ति है बड़ी तेज है, बड़ी श्रेष्ठ है, भगवान के प्रति भावना महाराज छोटी अवस्था की छोरी पर कितना विलक्षण भाव है उसका। भगवान से कह रही है, भगवान मेरा शरीर काम रहा है, तू बेशक जल जाए मेरा शरीर, कोई बात नहीं है, परंतु ये संतान बीज अंकुर बनवाना, ये संतान बीज मरा, ये नाश न हो जाए, इसलिए से रक्षा करी भगवान गर्भ में। उसे बाहर निकला तो भगवान दिखे नहीं, तो इधर देख छोटे बच्चे साफ जन्मता ही देखता है, परिसर एक क्षण में विश्वास से परीक्षित नाम होया, इधर देखता है वो कहाँ गए, और कहाँ गए, ऐसे एक क्षण करने से परीक्षित नाम हुआ उसका। तो उसके उत्तरा का भाव देखा जाए, बड़ा विचित्र भाव, बड़ा सुंदर भाव, बड़ा श्रेष्ठ भाव है, बड़ी भगवान के चरणों में भक्ति है, भगवान की शरण गई और महाराज और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप हो भगवान के लिए बेटी चिंता मैं सब करूंगा, भगवान तो दयालु है, कितनी बड़ी कृपा थी। ऐसी ऐसी बड़ी प्रसाएं हुई है, भगवान की बड़ी भक्त हुई है, बड़ी श्रेष्ठ हुई उसरा। ऐसे अर्जुन ने सिखाया था गाना बजाना नाचना, अप्सराओं को मात करते जैसे वह नाचती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे बजाती थी, इतनी तेज हो गई थी वो। जब पता लगा कि ये पांडव हैं, गुप्त से जैसे विराट के यहाँ पर, विराट की उत्तरा बेटी थी, उत्तर कुंवर था, तो विराट को पता लगा ये कंक भट्ट है, ये महाराज युधिष्ठिर है, ये वल्लभ रसोईया भीमसेन है, ये बृंदनारा बना हुआ इंद्र के बेस में अर्जुन है, ये गायों और घोड़ों के बीच नकुल और सहदेव है। पता लगा तो उसने कहा मेरा बड़ा अपराध हुआ, आपको यहाँ पर नौकरी दी नहीं मैंने, और काम कराया उन्होंने कहा महाराज आपने आश्रय दिया हमारे, तो रहना था अज्ञातवास में, आपके यहाँ पर रहे, बड़ा अच्छा किया आपने। वो कहते मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का ब्याह कर दूं अर्जुन के साथ, कहते मेरी। तो अर्जुन कहा मैंने पुत्री की तरह पढ़ाया है, मैं पढ़ाने वाला हूं, ये मेरे से गाना बजाना सीखने वाली है, मेरी पुत्री की तरह है, मैं ब्याह नहीं करूंगा, ठीक है, मैं तो देना ही चाहता हूँ, अच्छा तो मेरे पुत्र के साथ कर दो, तो मेरी पुत्री मेरी पुत्री कोई बात नहीं है। कितनी विदिक्ष बात, इतनी तो सुंदर थी, इतनी गाने बजाने में नाचने में बहुत विलक्षण थी, अवसरों के समान थी, इतनी होशियार थी, अर्जुन भी खुश हो जाते थे उसको नाचते गाते देख करके, लड़की को सिखा गई थी। तो सोचा कि कितनी महिमा कही जाए जितनी थोड़ी है, कितना भाव भगवान के प्रति, बड़ा अटूट भाव, बड़ा विलक्षण भाव। तब पांडवों के पक्ष में भगवान थे, एक अक्षरणी सेना दे दी, वो संसप्त गण उनको मारने में भगवान को बहुत जोर आया, इन पांडवों को युद्ध में, ये कृष्ण वर्मा था उनका सेनापति, यादवों की सेना एक अक्षरणी, भीमसेन तक नहीं बोला, और तो नहीं बोले, मैं भीमसेन तो बड़ा यूं था, संधि का प्रस्ताव लेके जाने लगे भगवान, पूछा तुम क्या कहते हो, सबने कहा संधि को, एक बार भीमसेन नहीं कह दिया संधि हो जाए, भगवान कहो तुम संधि कर, ना 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 मैं संधि नहीं कहता हूँ, अब मैं नहीं कहता हूँ, अब तो बस आ जाओ यहाँ, तो प्राणन की बाजी और प्राणन के पास है और प्राणन की बाजी है, अब तो बाजी तो लगेगी प्राणों की, अरे पास तो लगे बाणों के, उसमें कैसी जीत होती पता लग जाएगा आपको। और वास्तव में इसने बोला है वो भैंसंहार में, भैंसंहार नाटक में एक श्लोक आता है, मत नाम कौर सतंग समरे यावत दुस्साहसन निरंग न प्रमा मिलस्थम संचूर नाम कुदयान सुयोधन और संधि करो तो भगवता नृपति पड़े न संधि करे तो तुम्हारा राजा युधिष्ठिर बहुत तीन काम करूंगा मैं, मत नाम कौर सौ धृतराष्ट्र के बेटा है, उनको सबको मार के सौ को मैं अकेला मारूंगा, अगर कोई दूसरा मार दे तो उसको मार के सौ संख्या पूरी करूंगा। मसला हुए सबको, जब तक सौ को न मार दू मत नाम सतंग समरे नियावत। दुशासन से दुशासन तीर खेचा है तो उसके छाती खून तीर करके उनका हृदय का खून पीऊंगा मैं। और दुर्योधन ने जांग दिखाई है द्रौपदी को, तुम यहां बैठ गदा से वो जब तक चूर्ण न कर दू तब तक संधि करो तुम्हारा राजा संधि करे हमारी संध्या करेगा। सही बात ही नहीं कर रहे, कितना जोर से बोलता है। अरे करके दिखाया सभी, सब करके दिखाया। अरे खून प्यार नाचने लगा कि आज मेरे को जो रस मिला है ऐसा कभी किसी पेय से मिला ही नहीं, कोई आनंद ही नहीं आया। इतना नाचने लगा भगवान के लिए, राक्षस से भाई का खून पी रहा है, ये कोई मनुष्य है क्या, तरह आदमी है ये। वो क्या विक्रम साले का भाई जो था, उसने द्रौपदी के चीर खेचते समय द्रौपदी कहते कि न्याय होना चाहिए, मैं वास्तव में जीती गई कि नहीं, तो विक्रम बोला है, दुर्योधन का एक भाई था, तो विक्रम बोला है कि द्रौपदी नहीं जीती गई है, सभा में न्याय होना चाहिए। युधिष्ठिर ने आपने अपने को हरा दिया है, आप हो गया है दास, और यही महारानी, महारानी को दाव पर लगाने का दास को कोई अधिकार नहीं है, इस बार द्रौपदी नहीं जीती गई है। कर्ण गए छोकरा बैठ गया, बड़े बड़े द्रोणाचार्य आदि बैठे, तू क्या बोलता है, वो दबा दिया। जब उसको इसको मारा भीमसेन ने, भीमसेन मारा मेरी क्या है, सौ को मैं मारू विश्वास है, तू भैया बहुत ठीक बोला, मैं तो करूँ क्या, मैं तो प्रतिज्ञा मारूंगा वैसे। कितने विचित्र बात है, तो आचर है वही बढ़िया है, अभिमान बढ़िया नहीं है। दुर्योधन अभिमान करता था, उसके मन में थी कि मेरी जीत हो जाएगी, परंतु लखनऊ जीत हो थोड़ी अभिमान हो तो पंजूरा होता, और माहौल अपना अभिमान सोचा था कि मैं सबको जो कुछ करता हूँ नहीं करता हूँ करते हैं। तो भाई व्यवहार में प्रेम रखो, त्याग करो, दूसरे का हित चाहो। युधिष्ठिर महाराज है दुर्योधन को सुयोधन कहकर बोलते थे, कर्मी शब्द उसको भी नहीं कहते थे। एक भारत में एक कथा आती है बड़ी विचित्र, दुर्योधन को कह दिया कि तुम युधिष्ठिर से पूछो मेरी विजय कैसे है, युधिष्ठिर से पूछो। मन भाई युधिष्ठिर कैसे बताया, उनकी लड़ाई हो रही है, लड़ाई चल रही है, तो तुम कैसे गया युधिष्ठिर के पास, कैसे आया सुयोधन, कैसे आया कि महाराज मेरी विजय का उपाय बताओ। तेरे का उपाय विजय, तेरे घर में विजय, तेरे घर में ही विजय, बड़ी विजय तेरे घर में ही है। कि कैसे, कि माँ को कह देना पट्टी खोल कर तेरे सब देख ले, कि माँ मैं बेटा हूँ मैं सब देख लो, बस देखो बिल्कुल नग्न हो जाना, कपड़ा मत रखना, कपड़ा मत रखना, माँ के सामने जाते हो तो ठीक है, बिल्कुल नगन होकर के और माँ देखे ऐसे घूम जाना सामने, तो सब से इसको देख रहे ठीक हो जाएगा, कोई नहीं मरेगा। जा रहा आया, जाता जा रहा था, भगवान कृष्ण मिले कर कहाँ गया था, कि युधिष्ठिर के पास गया। अरे क्यों गया था, कि मैंने पूछा कि विजय हो जाए तो क्या बताया, कैसे माँ गए, अब तुम बच्चा है क्या, माँ के सब नगन हो जाएगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी, तो बारिश थोड़े है तुम बड़ा आदमी है, वह माँ के सामने नग्न हो जाएगा, शर्म नहीं, शर्म तो आएगी मारे, शर्म तो आओगे, तो इतना इतना रचक बना, इतना समझे, तो फूलों के कसनी बना करके ढक दिया इतना, तो वो जाएगा सब कच्चा। माँ ने देख लिया भी कहता है क्या, जिसने कहा है जो देख लिया वो घूम गया, जो माँ ने किसी पट्टी बांध ली, तुम युधिष्ठिर सीधा आया, कोई बीच में मिला कि बीच में तो कृष्ण भगवान मिले, तो बेटा इतना अभी तो कच्चा रह गया, वही जा भी थोड़ी उसने भीमसेन ने। तो युधिष्ठिर महाराज कितने विलक्षण, युद्ध जिनका हो रहा है, हार जीत सबके ऊपर है, उसको भी विजय का उपाय बता दिया। इस बार धर्म युधिष्ठिर कीर्तन है, युधिष्ठिर का नाम से धर्म बढ़ता है, तो वहां पक्ष बात नहीं है, वहां स्वार्थ की बात नहीं है, मेरा स्वार्थ कैसे होगा। अरे पूछते हैं तो उनको भी अच्छी बात बताते हैं, इस बहु सुते हुआ चाहे बैरी हो चाहे पुत्र हो उनका हिस्सा से और अब कसूर हो तो दंड देते हैं और नहीं तो उनकी रक्षा करते हैं। कितना अच्छा भाव है, क्या दशा दुनिया की हुई है। बुरे व्यसनों के लिए देवताओं का नाम महात्माओं का नाम वो ले ले करके अपने बुरी बुरी वस्तुओं को बिक्री करते हैं। कितना नीचा दर्जा हो गया है भारतवर्ष है। भारतवर्ष आप सोचो या विचार करो और क्या पूछे।
एक सामाजिक प्रश्न है, एक तो आजकल के समाज में आजकल विवाह पद्धति में जातियों की और दूसरे वर्णों की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है, उसमें दो कारण हैं।
क्या क्या हो रहा
है? विवाह शादी हो रही है तो एक वर्ण का दूसरे वर्ण में, दूसरे वर्ण का यूं
दूसरे वर्ण में।
हाँ, तो उसमें कहते हैं दो कारण हैं। एक तो लड़कियों की शादी बहुत देरी से होती है, फिर जैसा भी वर्ण मिलता है उसके साथ कर देते हैं, और दूसरा शादियों में अत्यधिक खर्चा होता है।
हाँ।
ये दो कारण ऐसे हो गए जिससे जाति प्रथा के अनुसार विवाह होना चाहिए वो विवाह नहीं हो पा रहा है।
बड़ी खराब बात है। मानो एक तो दहेज प्रथा बहुत हो गई है तो कन्या का विवाह होना मुश्किल हो रहा है। बड़ी बड़ी मांगते सब होता है, खर्चा बहुत करते हैं, लाखों रूपये बिजली का खर्च करते थे, बिजली का सजावट का कोई काम नहीं आता। बर पक्ष काम आता को कन्या पक्ष काम आता, नष्ट निरस्त हो जाए खर्चा, उल फेर खर्चा करते हैं, पैसा का इतना दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी का निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे वर्ण के बीच में ब्याह करते हैं, तो उनके पैदा को उनके जो ब्याह करने का अनुमोदन करते हैं ना उनको कहते आप वर्ण शंकर हो महाराज। अरे हमारे को वर्ण शंकर, वर्ण शंकर के दादाजी बाप हो, बाप वर्ण शंकर, वर्ण शंकर पैदा करने वाले हो आप, प्रसार कर रहे हो कि दूसरे वर्ण का दूसरे वर्ण पर होनी चाहिए, बेटी को लड़नी चाहिए दूसरे को लड़नी चाहिए दूसरे वर्ण की। ऐसी 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 पुस्तक छोड़ी है कि ब्राह्मणी अगर समाज के साथ मैत्र के साथ ब्याह कर आशीर्वाद मिलेगा। गांधी जी की बात सुनी मैंने, कितनी भयंकर बात है, अपनी संस्कृति का सत्यानाश करने के लिए बात है। मैंने पांच बात बताई थी कल ही कि आपके जाति की रक्षा करने वाली पांच बातें हैं, दिखती साधारण है। एक भाषा, अपनी भाषा, अंग्रेजी भाषा बोले, बात करे सब अंग्रेजी में, निज भाषा बिसराई है, पहल कोट पतलून शीश पर टोपी गोल जमाई है, जन्म कर्ज महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, बात करे सब अंग्रेजी में, अपनी भाषा भगवान की दी हुई, ऐसी संस्कृत है, हिंदी है, अपनी मारवाड़ी है, ये बोलो अपनी भाषा, कितना बढ़िया काम हो। तो भाषा अपनी भूल गई है, अपनी भाषा को भुला दिया है। एक भाषा रक्षा करने वाली आपकी जाति की रक्षा करने वाली भाषा, एक वेशभूषा, अपना पहनने का जो वेशभूषा है वो अंग्रेज छोरा छोरी को मतलब मोजा पहना पहना कर जूता पहना है। अब रीत है अंग्रेजों की, अंग्रेजी में तो ठंड घड़ी पड़ती है इस वजह से मोजा पहने, असल गर्मी घड़ी ऐसी मैं सोया नहीं मोजा पहना हुआ मूठ पहना हुआ असभ्यता है। भले गर्मी में मरो भले तो पहनाना है। विदेश में सुना है कि स्त्रियों के बच्चों के छोटी छोरियां होती है ना उनके लोहे की जूती कर पहना देते हैं, क्योंकि छोटा पैर हो उसकी बड़ी महिमा है, तो छोरी का बड़ा पैर बढ़ जाएगा और मोटा हो जाएगा तो फिर इनकी शादी नहीं होगी। लोग कैसे बड़े पैर वाली है तो जिनको सोचते हैं अब तकलीफ होती है लोगों की पहना दे जिसने पैर बढ़े नहीं उसका, अब छोटे फिर चलने में मुश्किल होती है, छोटे पग तो छोटे बढ़िया उसका होगी वो ज्यादा हो गया छोटे पैसे वो सर सभ्यता होगी साहब। ऐसी बात है, ऐसे आज सभ्यता के बहाने कितना अनर्थ हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें हो रही। बच्चे की बात सुनी मैंने, छोटी बच्चियों को लोहे की जूती पहना दे जिससे उसका बढ़ ऊंचा बढ़ दी जाए, और ये श्रृंगार करती है कितनी कितनी अशुद्ध अशुद्ध चीजों का खाना पीना, जिसका पान राग है, पान राग के बीच में नशीली चीजें खाना शुरू करते तो छोड़ नहीं सकते, महान व्यसन खोटा महान पसंद करता है। अरे महाराज कितना 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 रुपया खर्च कर देते हैं उन्होंने, ये चीज खाने की देते जिसमें नशे बढ़ा दे, नशीली चीज है जिसमें उनको अच्छा लगे, नशा हो वो पीने लग गए। अरे दूसरी चीज क्या करे, मदिरा पीने लग गए, मदिरा पीते हैं और इसमें राजी होते हैं। पुरुष पीने लग गए, मजदूरी करने वाले भी पैसा आते हैं मदिरा में खा लेते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का राज चला गया मदिरा पीने से। दारा पर दारू पर दारा दो है तन धन की हान, दारू पर दारा दो है तन धन की हान, नर सांप्रत देखो निजर नफा और नुकसान, कितना सारू से नुकसान होता है वो पीते हैं। अच्छे अच्छे लोगों में आज बड़ी मुश्किल हो गई है। सिंहासन की बात है, मैं गया था राम ने बहुत सीखी थी, मैंने कहा भैया देखो आप खाना पीना शुद्ध करो। एक बड़ा ने बोली कि महाराज ऐसे सब बमन बनिया है, बमन बनिया, अब बमन बनिया बनिया और ब्राह्मण ये शुद्ध है। आज ब्राह्मण बाड़ियों में मदिरा, अब किस लोग जानते हैं अंडा मछली मांस मदिरा, ये हो गया ब्राह्मण में हो गया, वैश्य में हो गया, अग्रवाल है माहेश्वरी है इनमें हो गया। अब बच्चे अच्छे अच्छे धनी घराने के मैंने देखा, कलकत्ते में बड़े धनी आदमी अग्रवाल वहां जाने का काम पड़ा तो कूड़ा कचरा पड़ा था नीचे, उसमें अंडे के छिलके थे, मैंने खुद आंकड़ देखा। अंडा खाना तो सभ्यता होगी, ये तो बढ़िया चीज है। लोग कहते हैं ये फल है, फल से इसका मेरा तब देखना, अभी फल नहीं है, अभी तो कर्म है। कोई कहते ये क्या है, ये तो मछली जल चुरी है, जल चुरी है तो जल की तोड़ू है, जल चुरी है देखो फल है। ऐसी भयंकर दशा हो रही है, खान पान के बीच में बहुत दुष्ट हो गए हैं। वैश्यों में ब्राह्मणों में जो पवित्र थे, मारवाड़ के ब्राह्मण मारवाड़ के वैश्य ब्राह्मण बनिया क्या कर रहे इस तरीके से, ऐसा उनमें ये चीजें हो गई। बड़े बड़े धनी आदमियों में ज्यादा हो गई, गरीब में तो फिर भी कुछ बचे हुए हैं, पर तो शहरों में तो बचना मुश्किल हो गया। गांव में कुछ ठीक है, भगवान की कृपा है, पर तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे क्या है पता नहीं, मैं पर जानता नहीं, परंतु ये सभ्यता हो गई है, मदिरा पीना सभ्यता हो गई। किसी के जाए तो वहां पर मदिरा पियो, चाय पियो, आशा में तो चाय की चाल पहले से है, आवेदन करो चाय पियो, जहां जाओ पास चाय पियो, चाय कुल नहीं पियो, चाय पियो। कैसे हो गई यहाँ ठंडक रहती है, चाय मैंने कैसे चलेगा, काम चलता है अच्छी तरह से, दो तीन बार गया हूँ घूमा हूँ, कुछ चाय पीना काम नहीं, ऐसी काम चलता है, जी चलता खूब आराम से आराम से आराम, पर लोगों को बहन है तो बैठो खान पान सारे करो। एक तो आपकी ये खान पान भोजन, एक आपकी बोली भाषा, एक वेशभूषा, एक रोटी और एक बेटी, ये पांच आपकी रक्षा करने वाली चीज है। आपकी भाषा अपनी होनी चाहिए, अपनी भाषा बोलो, हिंदी बोलो, मारवाड़ी बोलो, भाषा। बड़े बड़े धनी आदमी ईसाइयों के स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, ईसाइयों स्कूल में नियम कर दिया है कि कोई हिंदी बोल नहीं सकता, अंग्रेजी पढ़ते अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में कोई बोल जाए तो जुर्माना होता है, इसको जुर्माना दो, इतना रुपया देना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में बोल गया है। ये बात आप देख लो, मैं झूठी मैं सुनी हुई बात कहता हूँ साहब साहब, बिल्कुल सच्ची बात है। उन्होंने कहा कि हमने देखा ऐसा काम, हिंदी बोलने नहीं देते तो वेशभूषा आपकी भाषा भी गई, वेशभूषा भी आज मगर अंग्रेज आ रही है, छोरा छोरियों को मोजा पहनाते हैं, मूंड पहनाते हैं और वेशभूषा देते हैं। कलकत्ता में एक विद्यालय खुला, उसका विज्ञापन मिला, मेरे को बुलाया था वहां विद्यालय खुलेगा, उस विज्ञापन में वहां देखा, मैंने गया उस बाद में देखा तो उसमें लगे अंग्रेजी जैसी चाल है उस चाल से विद्यालय चलेगा, ये महिमा थी वहां। अंग्रेजी से हो गई। अरे हिंदी स्कूल बम्बई में, हिंदी स्कूल नाम है उसका, अरे हिंदी नहीं पढ़ाते अंग्रेजी पढ़ाते, ये दशा है। अंग्रेजी पढ़ाओ, छोरा छोरी का प्यार नहीं होगा, छोरी अंग्रेजी पढ़ लिखी है ये नहीं, अंग्रेजी पढ़े छोरिया तो उसका प्यार हो, तो बेचारे मुश्किल हो रही है, क्या करे, अंग्रेजी पढ़ाओ। अरे अंग्रेजी पढ़ाओ वहां पर ईसाई पढ़ा सिखाते हैं। एक लड़के ने निकाल के दोपहर के इसमें ये कऊ का मांस, गाय का जो मांस होता है ये कलाओ बहुत बढ़िया होता है, पुस्तक में पढ़ाई की पुस्तक में, अंग्रेजी की पढ़ाई के पुस्तक में लिखा है। बीकानेर में गौशाला में वहां सभा हुई, उस सभा में मैंने कह दिया, एक ब्राह्मण ने ब्राह्मण उसके व्याख्यान देने लगा कि मारे आगे बागपत में लिखा है, आप में तर्क में लिखा है, मानसिक गुणों दोष सब लिखा है, उसमें भी लिखा है इसकी आवाज भी ऐसी को पढ़ाई में लिख जाती क्या होगा। एक ब्राह्मण मैं बोल चूंगा नहीं तो बताता मैं दशा उड़ाता ऐसे कर रहे मैं तो पहले बोल चूंगा सब हम बोलेगा अवसर नहीं, ऐसे ब्राह्मणों के हृदय में ऐसी बात आ गई। अब किसको बताऊं, सातु देश में होने वाले साधुओं में भगवान नाम की निंदा, अवतारों की निंदा, राम जी की निंदा, गीता कृष्ण भगवान की निंदा, ये साधुओं में चीज आ गई। देवी भागवत से प्रसंग आया है, मैंने सुना है उसका कि कलयुग जब आएगा साधुओं में ब्राह्मणों में राक्षस आएंगे, निंदा करते हैं कृष्ण भगवान की, राम जी की निंदा करते हैं, वो पहचान लो और भगवान है वही है जो लिखा है ना कलयुग में आने वाला, उस जगह में राक्षस रही वो सर से पहचान लीजिए और लीजिए सावधान रहिए, जो कोई साधु ब्राह्मण ऐसी करे निंदा भगवान की, भगवान के नाम की निंदा करे, कृष्ण भगवान की निंदा करे, गीता जी की निंदा करे, राम जी की निंदा करे, तो समझ लेना चाहिए वही राक्षस है, असुर है, ये ब्राह्मण में साधु प्रकट हो जाए और पहचान लेंगे सामने ठीक तरह से।